ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अन्ते अवसायिभ्य कामान् संविभजेत् यथा अपि एकाम् आत्मनः दादाम् नृणाम् स्वत्वगृह जतः आस्वाघान्ते वसायिभ्य कामान् संविभजेत् यथा अप्य कामात्मनो दाराम् नृणां सत्वाग्रहो जतः यहाँ तक की स्व कुत्ता अघ पापपूर्ण पशु या जीव अन्ते अवसायिभ्य सबसे नीच चंडाल कुकर सुकर का मांस खाने वाला कामान जीवन की आवश्यकता है संविभजेत विभाजित करे जथा जितना अपि भी एकाम एक आत्मनः अपने दाराम स्त्री को नृणाम सामान्य लोगों को स्वत्व गृह स्त्री को अपने स्वयं से अभिन्न स्वीकार किया जाता है जतः जिसके कारण अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कुतों पतित पुरुषों तथा चंडाल समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। यह आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक आसक्त रहता है अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। तात्पर्य यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज समान माना जाता है लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन में कुत्ता अस्पृश्य होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की तो बात कोसों दूर रही जाति से निकाले व्यक्ति या अछूत चंडाल को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में यथा शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है जितने का वो पात्र है उतना। जाति से निकाले गए लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए अन्यथा वे उसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ इस समय निम्न जाति के लोगों को सामान्यतः काफी मजदूरी दी जाती है लेकिन ऐसे लोग अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने में उपयोग न करके शराब पीने तथा इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है चातुर्वर्णो मया सिष्टम गुण कर्म विभाग स। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के चार विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्यों के कर्मों और गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में हैं, किंतु वे केवल मनुष्यों के बारे में विचार करते हैं, निम्नतर पशुओं पर नहीं। किंतु भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक हैं, इसमें संस्तुति की गई है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा के लिए दे देने के पीछे यह भावना होती है कि वह अपनी पत्नी के घनिष्ठ संबंध को अथवा अत्यधिक आसक्ति को धीरे धीरे त्याग दे, क्योंकि इसके कारण वह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी या अपने से अभिन्न सोचता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि स्वामित्व की भावना को, यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना चाहिए। भौतिक जीवन का स्वप्न ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए कारण स्वरूप है, अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलतः मानव जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसा कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। इसके साथ भी एक श्लोक इसी से संबंधित है, 12, उसको भी मैं कहना चाहता हूँ। जह्यादर्थे स्वप्राणान हन्याद्वा पितरम गुरुम तस्या सत्वम स्त्रियाम जह्याद अद्यस्ते नह्यजितो जितः। मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है, वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को, यहाँ तक कि अपने माता पिता, गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। अतः यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर सकता है, तो वह उस अजीत भगवान को भी जीत लेता है। दो बार अजीत को जीतने का सिस्टम बताया गया है, एक यहाँ और एक ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कहते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति भगवान को जीत सकता है। जब भी भगवान अजय है, वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजय है। अजित अपी जीतो असी। प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त होता है। नारी विवश नर सकल गोसाई। अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अति कठिन होता है, किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए नियुक्त हो जाए, तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकने वाले भगवान उस भक्त के बस में हो जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए, तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी और बच्चों से स्नेह तोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए। इसमें कौन सी भौतिक क्षति हो जाती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपने पत्नी के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपने पत्नी से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति। खाली पत्नी से विरक्ति अधूरा रह जाएगा, कृष्ण में आसक्ति। वैराग्य का अर्थ है विगत राग इति वैराग्य, विशेष राग इति वैराग्य। परिवार से विगत राग और कृष्ण में विशेष राग, तब पूरा संन्यास होता है। नहीं, घर छोड़कर स्त्री से नाराज होकर हरिद्वार जाकर जूना अखाड़ा ज्वाइन करके गांजा पीने लगे, तो उससे क्या फायदा हुआ। या इससे नहीं पटा तो घर छोड़कर जाकर दूसरे से विवाह कर लिए, ये संन्यास का अर्थ नहीं है। या किसी व्यभिचार में लग गए, तो यह गृहस्थों का धर्म है। देखिए, विशेष बात यह है कि कुछ परिस्थितियों में कुछ गलतियां होती हैं, तो उन्हीं के लिए कहा जाता है। भजन करने वालों से कुछ अपराध होता है, जो भजन नहीं करते हैं उनसे नहीं होता है, तो उसको भक्ति रसा में सिंधु में जब मैं प्रथम बार सुना रमेश बाबा के मुख से, तो मैं सत्य कहता हूं, नख से सिर तक पूरा शरीर कांप गया, कहे कि आप लोग नहीं जानते हो, रूम में बात कर रहे थे हम। भक्ति गोस्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति जात अनर्थ। मैं कहा बाबा भक्ति जात अनर्थ, अर्थ समझने में तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ, भक्ति से अनर्थ का जन्म होता है। भक्ति जात अनर्थ क्या है, एकदम मैं सकपका गया। तो कहे कि नहीं पढ़े हो, नहीं सुने भी नहीं, प्रथम बार आप सुन रहे हैं, और वो भी रूप गोस्वामी लिखे हैं। तो हम लोगों के पास जो भक्ति गोस्वामी सिंधु है, प्रभुपाद का लेक्चर बहुत संक्षेप में है, बस केवल लेक्चर दे दिए हैं, पुस्तक है, लेकिन एक एक शब्द एक एक श्लोक उनका विस्तृत ग्रंथ है, सब पॉइंट पर एक एक श्लोक है, सूत्र है। तो भक्ति जात अनर्थ का अर्थ है कि भजन करने वालों से अनर्थ होती है, गलतियां होती हैं, दूसरे जो नहीं करता है उनसे नहीं होती है, कुछ स्पेशल गलती है। उसी प्रकार कुछ गलती गृहस्थों से होती है, उसी से होगी, दूसरे से नहीं। कुछ गलतियां ब्रह्मचारी से होंगी, अलग अलग स्टेज में गलतियां होती है। तो भक्ति जात अनर्थ यह है कि हम दीक्षा लेने के बाद एकदम स्ट्रिक्ट भजन करने लगे, 16 माला जप, मंगला आरती, दर्शन आरती, क्लास और भी जो सेवा है एकदम तत्परता पूर्वक विदाउट फेल 25 साल से मंगला आरती करते हैं। तो महात्मा मंगला आरती करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके दिमाग में एक अनर्थ उत्पन्न होगा कि ये नहीं करता है, ये दीक्षा लेकर कभी आता है कभी नहीं, ठीक से जप नहीं करता है। ये बाहर के लोग ये सब नहीं देखने वाले हैं कि भक्त लोग मंगला आरती करते हैं कि जप करते हैं कि नहीं करते, उनको इससे मतलब नहीं। लेकिन जो ज्यादा भजन करता है वो दूसरे का दोष देखने लगता है, वैष्णव का। तो यह जबरदस्त अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, इससे बचना चाहिए। आपको दीक्षा के समय यह ड्यूटी नहीं दी गई थी कि मंगला आरती के साथ दूसरा नहीं करता है उसका दोष देखो, कोई गुरु नहीं बतलाया, कोई शास्त्र नहीं बताया, लेकिन मन में एक अपने भजन के प्रति अहंकार और दूसरे के प्रति दोष बुद्धि, यह है भक्ति जात अनर्थ। यह रामदास ऐसा है, श्यामदास ऐसा है, तो ये सब होने लगता है। तो यह अनर्थ भक्ति के करने से होता है, इससे बचना चाहिए। किसी के दोष देखने का अधिकार गुरु को है, अपने शिष्यों का दोष देखने का, अथवा गुरु के द्वारा नियुक्त गुरु के प्रतिनिधि का है। अगर वह नियुक्त किए हैं कि आप प्रेसिडेंट हो, मंदिर के टेंपल कमांडर हो, आप भक्तों को ठीक से भजन कराओ, तो वह देख सकता है कौन सोया है कौन नहीं आ रहा है, बस उसी का, बाकी और किसी का नहीं। और उसका भी सीमित अधिकार है, केवल उस भक्त से उसके दोष की चर्चा कर सकता है, दूसरे से नहीं। ऐसा नहीं कि अरे रामदास तो बड़ा बेवकूफ है, हरामी है, वो तो कभी भजन करने आता नहीं, यह किसी दूसरे से नहीं कर सकता। वह उससे कहे और स्नेह से कहे, प्रेम से कहे, अरे भाई क्या बात है नहीं आते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या दिक्कत है, आया करो, लापरवाह मत बनो, प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक। तो केवल उसको अधिकार है, दूसरों की गलती को दूसरों से चर्चा करना उस तरह का अपराध है। महाराज श्री कहते हैं जैसे कहीं गंदा पड़ा हुआ है, कोई मल पड़ा हुआ है बिस्तर रास्ता पर, और कोई व्यक्ति उसको उठा लिया और उठाकर जगह जगह पर छीट रहा है, एक जगह पड़ा था लेकिन कई जगह उसको डाल दिया, अगर संभव है तो उसकी सफाई कर दो, नहीं संभव है उतना नहीं कर सकते तो उसमें मिट्टी डाल दो, वो भी नहीं करते तो चुपचाप चले जाओ, चौथा काम मत करो उठा करके छीटना डिस्ट्रीब्यूट करना। और प्रायः करते यही है, जब कोई गलती सुनते हैं तो बिना किसी से कहे रहते नहीं। यह काम केवल मीडिया वालों को छोड़ दीजिए, भक्तों का काम नहीं है। मीडिया वालों को कहीं अच्छा हो रहा है वो दिखाई ही नहीं देता, कहां बुराई हो रहा है यही दिखाई देता है। एक बार उधर खरगोन में भोपाल के पास एक प्रोग्राम था, मैं गया था, तो बहुत सारे लोग आ गए, चौथा पांचवा दिन 15-16 पत्रकार, बहुत तरह के उत्पटांग प्रश्न करते थे। तो उसमें कहे कि बहुत देश में भागवत हो रहा है, कथा हो रही है, लेकिन सुधार किसी का नहीं हो रहा है। पहले वन में जंगल में लोग भागवत करते थे और पवित्र रहते थे, इसका क्या कारण है? कहीं इसका एक कारण नहीं है, इसका कई कारण है। वक्ता, ऑर्गेनाइजर, श्रोता सब व्यवसायिक हो गए हैं, और सबसे खतरनाक चौथा कारण मीडिया है, जो भागवत के तत्व को समझने का कभी प्रयास नहीं करते। मीडिया वाले बैठ कर सुनते नहीं। मैं 5 दिन से कथा करता हूं, कभी पता नहीं चला। अभी भी कथा के लास्ट में आकर बकवास कर रहे हो। बैठो, 3 घंटा सुनो मैं क्या कहा, उसको अपने दिमाग में समझने का कोशिश करो, तो इसके लिए टाइम नहीं दोगे। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको जरूर छापोगे। भागवत के अंदर जो जीव के लिए कर्तव्य का वर्णन है उसको छापो ना, उसको टेलीकास्ट दिखाओ सीधा लोगों को, ये नहीं दिखा सकते। लेकिन कौन लड़का लड़की को पकड़ लिया, यह तुम्हारे दृष्टि से नहीं पड़ सकता। इसको जरूर छापोगे तो दूसरे गुंडों को भी प्रश्न मिल जाएगा, अच्छा ये भी एक आइटम है क्या। लोग कहीं कहीं ऐसे मूर्ख हैं, धूमपान निषेध तब उनको याद आता है, अरे यार सिगरेट नहीं पिया, तब उनको पीने का याद आता है। कहीं लिखा है यहां पेशाब न करें तो उसी समय उनको पेशाब लगेगा। तो इस तरह की गलतियां लोग करते हैं, ये बताने की क्या जरूरत है? कुछ अच्छा चीज हुआ है उसको दंडित करने की जरूरत है ना। जिसको बताना है उसको बताओ, शासकों को बताओ, जनता को बताने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारी क्षमता है किसी गलती को पकड़ने का तो बहुत अच्छा है, शासकों को बताओ जो प्रशासन में है। जनरल पब्लिक यह जानकर क्या करेगी? इस तरह के बेवकूफी। तो उसी में उसी समय चल रहा था आईजी पंडा की चर्चा, तो कहा आप आईजी पंडा के विषय में बता सकते हैं और राधा रानी के स्वरूप है क्या है। कहीं मैं कुछ नहीं जानता, अगर कुछ सुना भी हो तो आप लोगों का जूठा है, आप ही लोग जानते हो कौन है क्या है। इस तरह से बकवास मत करो, कायदा से कुछ पूछो, इस्कान क्या है, क्या कर रहा है। कहीं हाँ अब ये सब मैं बतलाऊंगा खूब बढ़िया से। तो इस्कान के विषय में 5-6 प्रश्न किए तो उसको उत्तर देने में बड़ा आनंद आया। क्या कर्तव्य है आप लोग, क्या आप चाहते हैं? हाँ ये सब पूछो, हम लोग क्या चाहते हैं, दूसरी बकवास मत करो। सबसे ज्यादा गड़बड़ मीडिया वाले कर रहे हैं, तो यह काम उन्हीं लोगों के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। हम लोगों का काम नहीं है किसी के दोष की चर्चा करना, खासकर वैष्णव की चर्चा। तो देखिए यहाँ गृहस्थ धर्म का वर्णन है, गृहस्थों की जिम्मेवारी है। यह अध्याय ठीक से पढ़ेंगे, अगर विवाह से पहले पढ़ लिए तो कान पकड़ लेंगे गृहस्थी में जाना, बहुत जिम्मेवारी है। गृहस्थों का कर्तव्य चारों वर्णों का भोजन देना है। सन्यासी और ब्रह्मचारी तो भोजन देना तो उनका कर्तव्य है, वानप्रस्थी ये तीनों को खिलाना गृहस्थों का काम है। कमाने का ड्यूटी केवल गृहस्थों को है, न ब्रह्मचारी का है, न वानप्रस्थी का है, न सन्यासी का है। एक वर्ग कमाता है और 75% लोग खाते हैं, केवल 25% लोग गृहस्थ होना चाहिए। तो ऐसे लोग कमाते हैं, साधुओं को खिलाना कर्तव्य है। और साधु सन्यासी के विषय में तो दत्तात्रेय जी कहते हैं साधुओं को सांप की तरह रहना चाहिए। जैसा सांप दूसरे के बनाए हुए बिल में रहता है और बनाने वाला को ही खाता है, चूहे को, तो साधु लोग भी घूमते रहते हैं, गृहस्थों के घर में रहते हैं, गृहस्थों को ही खाते हैं। प्राण 2 प्रकार का होता है, एक बही प्राण, एक अंतः प्राण। तो अंतः प्राण जीव प्राण है जीवात्मा के साथ, और बही प्राण रुपया पैसा, खाते भी हैं, दक्षिणा भी लेते हैं और उसके घर रह भी लेते हैं। ये तो सन्यासियों का काम है, और ब्रह्मचारी भी भिक्षा करते हैं, वानप्रस्थी भी जंगल में कंदमूल फल खाते हैं। कमाने वाला ड्यूटी गृहस्थों का है, तो उसको क्या करना चाहिए? कुत्तों, पतित पुरुषों, चंडाल समेत सभी अछूतों को समुचित आवश्यकता की पालन करे, अश्व आ माने समेत सबके साथ, अश्व माने स्व स्व माने कुत्ता, अघ अंते अवसायभ्य मतलब जो पाप प्रवीण लोग हैं, जिनका समाज बहिष्कार कर दिया है, जिनका छुआ वो नहीं खाना चाहता, जिनको कि जिनके गलती पर उनको निकाला गया है, उनको अंत्यज या पाप निष्ठ, ऐसे पाप निष्ठ मनुष्य समाज में बहुत सारे जाति है। आजकल तो सब खत्म हो चुका है, उसकी चर्चा करना ही बेवकूफी हो जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार कुछ बड़े वैज्ञानिक ढंग की व्यवस्थाएं थी। कुछ ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोग जो गलतियां करते ही हैं, वो मानेंगे नहीं, उनके नेचर में है, तो उनको तिरस्कार करके, उपेक्षित करके एक समाज में रख दिया जाता था, उनका गांव अलग कर दिया जाता था। वो अछूत है, वो बेविचारी है, वो मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो किनारे रहो, साइड से रहो, तो इस तरह की गलतियां करते हैं। सब बड़े वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था किया जाता था। कुछ इस प्रकार के प्रवृत्ति युक्त स्त्रियों को अलग से राजा लोग उनको विश्यालय निर्माण करके उनको उधर भेजते थे, ये समाज में आकर दूसरे सज्जन पुरुषों को भ्रष्ट न करे। अथवा जो लंपट है वो जहां तहां किसी सती को न टच करे, और जनरल टॉयलेट में जाए, वहां वेश्यालों के वेश्याओं के पास। इस तरह की व्यवस्था वैदिक व्यवस्था है। तो जैसे जहां तहां लोग रोड पर पेशाब कर देते, शौच कर देते, इसलिए शौच पेशाब की जगह बनाया गया है, सब जगह गंदा मत करो, वैसे ही समाज में व्यवस्था है। ऐसे अछूत चंडाल कुत्ता का मांस खाने वाले अछूत, ये लोगों को अलग कर देंगे साइड से, अब उनका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, तो फिर उनका भोजन कैसे चलेगा? तो उनका भी भरण पोषण करना गृहस्थों का काम है, उनको जरूरत भर भोजन देना पड़ेगा, कपड़ा देना पड़ेगा, और ये आवश्यकता है गृहस्थों के द्वारा पूरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने धन की बात तो छोड़िए, अपनी पत्नी को भी पवित्र अतिथि सेवा आदि में लगाना चाहिए। कोई भी घर पर आ गया, उनके लिए भोजन बनाने के लिए पत्नी को तैयार रखना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए कि वह आलस न करे सेवा करने में। एक बार एक व्यक्ति के आग्रह से, बहुत आग्रह कर रहा था 3-4 दिन से, बिहार के गांव में, तो 2 लोग हम लोग गए, कहे हमारे यहाँ आइए, थोड़ा सत्संग हो, बहुत इच्छा है। तो कहे ठीक है। तो शाम को 7-7:30 बजे पहुंचे हम लोग। गर्मी का दिन था, अभी सूर्यास्त हो रहा था, तो पानी लाया। पानी पीने के बाद कहा कि तो फिर क्या करते हैं प्रसाद के लिए, छोड़िए दूसरे जीव को क्या दुख देना है, हम लोग यही लिट्टी लगा लेते हैं, बाटी और चोखा लगा लेते हैं, तो कहीं किस जीव को दुख देना। तो वही पत्नी, उसको कहना पड़ेगा नहाने धोने का, तो पता नहीं, नहा धोकर भोजन बनाना पड़ेगा। मुझे गर्मी का दिन है, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं कि अरे हमको कहने का ही हिम्मत नहीं है। तो मैं कहा तो फिर आप इतना हिम्मत कैसे कर लिए हम लोगों को बुलाने का? तो कहे कि सत्संग सुनने की इच्छा है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, सत्संग बिना खाए भी कर सकते हैं, दिन में खाए ही ना, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो सत्संग प्रेमी है उनको बुलाइए, कथा करेंगे, सो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हमारे साथ में भक्त हैं गौर हरिदास गृहस्थ, वो थे, कहे कि अब वो गाली देना चालू किए। मैं कहा बस बस, गृहस्थ ने कहे कि इस तरह से बेवकूफी कर रहा है, 3 दिन से आकर कह रहा है चलिए चलिए, और ऐसा करने लगा, मत चुप रहिए, ठीक है। तब गौर हरि जाकर व्यवस्था किए दूसरे के यहाँ, और फिर हम लोग सत्संग किए। तो कुछ लोग ऐसा है, ऐसे प्रवृत्ति के हैं कि वो अपने स्त्री को कह ही नहीं सकते कि साधु की सेवा करना चाहिए। तो वो बता रहा था कि वो अपने नैहर से आने वालों की सेवा करती है और किसी के आने वालों नहीं करते। मैं कहा कि हम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप मत कुछ बतलाइए, ठीक है, हम आप पर नाराज नहीं हैं, ये हमको पता है। तो स्त्रियों को इस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए कि घर में जो अतिथि आ जाए, जो बिना सूचना के आने वाले को अतिथि कहते हैं, बिना डेट दिए, और जिनको बुलाया जाता है उनको अभ्यागत कहते हैं, उनका सम्मान, उनकी तो तैयारी होती ही है कि आने वाले हैं। तो आने वाले अभ्यागत की तैयारी तो पहले से है, लेकिन अतिथि की सेवा गृहस्थों का सबसे बड़ा धर्म है, जो अचानक आ जाए। तो यह कर्तव्य है। यहाँ तक कि कुत्ते का पालन भी उचित है। कुत्ता एक निकृष्ट जीव है, उसका उसके शरीर से छू जाने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, उसे स्नान करना पड़ता है। ऐसे अस्पृश्य जीव कुत्ता, सुअर और चंडाल, मनुष्य जाति में भी चंडाल है। तो हमारे यहाँ भंगी डोम जो बांस उसके बनाते हैं उनको अस्पृश्य माना जाता है, छूना नहीं चाहिए। एक बार मुझे याद है, मैं छठवां या पांचवां क्लास में पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति बांस का बना हुआ बहुत से सूप बर्तन और टोकरी उकरी लेकर आया था, अस्पृश्य जाति का था। और वहाँ लोग उसे खरीद रही थी कुछ स्त्रियाँ माता जी लोग, तब तक मैं जाकर उसमें से एक उठा लिया, पढ़कर स्कूल से आया था, उसमें से एक उठा कर देखने लगा। इतना वो कभी मैं भूल नहीं सकता। तो हमारी बड़ी माँ थी, कही अरे तू इसको छू दिया, मैं तो प्रथम बार जीवन में जाना कि कुछ गलती कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरा जो वास्ता किताब काफी था उसको अलग करके जो भी पहना था, और वो भी जाड़ा का दिन था, दिसंबर का महीना, पढ़ कर आया था 4-5 बजे शाम को, और सारा कपड़ा के साथ कुआं पर खड़ा करा कर स्नान की कराई, पूरा भींगा दी। मैं कहा कि घर में घुसने ही नहीं दी, चल यहाँ नहा कुआं पर, तो क्यों इसको छुआ, सारा कपड़ा सब कुछ स्नान करवा कर तब घर में जाने दी। मुझको बहुत शोर लगा, क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो गया। तो कहे वो अछूत है, उसको नहीं छूना चाहिए, क्यों छुआ उसको, इतना भारी दंड। तो यह स्थिति है समाज में। अब तो सब चीज बिगड़ गया, मैं अपनी बचपन की बात कह रहा हूँ, अब हो सकता है वहां भी ये सब भेदभाव मिट गया हो। तो अस्पृश्य जाति के होते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को भी भोजन देना चाहिए, कुत्ते को भी भोजन देना चाहिए। कहते हैं कि आजकल कुत्ते को लोग बड़ा प्रेम से गोद में लिए रहते हैं, बेड पर सुलाते हैं, जिस बेड पर सोते हैं उसी बेड पर चला जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर में नहीं घुसने देना चाहिए, शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर है ही। और वृंदावन में एक बार हम और विश्वात्मा बाकी बिहारी की तरफ से आ रहे थे, तो अचानक अरे देखिए 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 क्या हो गया, मैं तो डर गया क्या हो गया। तो पीछे ऐसे मुड़ कर देखा तो एक साइकिल रिक्शा पर एक लड़की जा रही है और कुत्ता को लेकर चूमते हुए। तो मैं कहा कि वास्तव में आश्चर्यजनक चीज है, वृंदावन जैसे पवित्र धाम, न्यूयॉर्क और इंग्लैंड होता तो कोई बात नहीं, भारत में वो भी वृंदावन में इस तरह के आश्चर्य की चीज तो है ही। कहा तू इसको बताने के लिए इतना घबरा कर बतला उसको आश्चर्य लगा, देखिए 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 देखिए। तो इस समय तो लोग विचित्र व्यवहार करते हैं, ऐसे समाज के उपेक्षित जाति चंडाल या कुत्ता, उनके जीवन की भी आवश्यकता है प्रदान करना गृहस्थ का कर्तव्य है, देना चाहिए। इस संबंध में एक शब्द प्रयोग हुआ है, जथा कामान संबी भजे जथा। जथा माने जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी ही, उससे ज्यादा नहीं। चाणक पंडित कहते हैं कि शूद्रों से, अंत्यजों से, उपेक्षित जाति चंडाल आदि से काम कराकर तब उनको वेतन देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, पहले नहीं। और ब्राह्मण को खिलाकर काम कराना चाहिए, चाणक पंडित कहते हैं कि ब्राह्मण को खिलाकर काम कराना चाहिए और छोटी उपेक्षित अंत्यज आदि जातियों को काम कराकर देना चाहिए। आगे दे देने में क्या दिक्कत है, वो काम पर आएगा ही नहीं आगे एडवांस पैसा दे देंगे तो हो सकता है शराब पी कर गिरा हो, उसको शाम को पैसा मिलेगा तो रात को शराब पिएगा, तो शराब तो निश्चित पीना है। लोग काम करते हैं कोल्ड फील्ड में, आज भी बंगाल में मैं देखा हूं, उधर उनको 12,000-15,000 रुपया मिलता है, मजदूरी 8 घंटा काम करते हैं 15,000-20,000 रुपया 25,000 मिलता है, लेबर का काम करते हैं, और 20,000 रुपया उनको हर महीना में कम पड़ जाता है, 3-4-5,000 रुपया कर्ज रहता है, इतना खर्च करते हैं, इतना शराब मांस में खर्च करते हैं कि हर महीना वेतन लेते ही देने वाले लोग वहां खड़ा रहते हैं लेने के लिए, वो लेकर घर भी नहीं पहुंच पाता है, और जिसका पैसा लिया है वो ले लेते हैं, वो उतना ही नहीं पेमेंट करने वाले के साथ मिलकर अपना लिस्ट दे देते हैं, वही वहीं से बांट देता है, उनके पास 200-400 भी नहीं मिल पाता। ये है शूद्रों का व्यवसाय। वे जाति से निकाले गए होते हैं, जितना उनकी जरूरत, जितने के वो पात्र हैं उतना ही उनको देना चाहिए, ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी को यह उत्पटांग लग रहा है कि निम्न जाति के लोगों को, ऐसे लोगों को काफी मजदूरी दी जा रही है या बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, तो ये लोग धन को ज्ञान के अनुशीलन में, आध्यात्मिक जीवन में नहीं लगाएंगे, शराब पीने में, मांस खाने में लगाएंगे। इसी लोगों की योग्यता पर विचार करके उनको वेतन देना चाहिए, काम देना चाहिए। इसीलिए भगवान के श्लोक को कोट करते हैं, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ। और इसके साथ साथ ऐसे वैष्णव सिद्धांत क्या है, ये तो समान गृहस्थों का आचरण है, लेकिन जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ गई है वो कैसा व्यवहार करेगा, छुआछूत का भेद नहीं, सभी जीवों से प्रेम करेगा, सब में भगवान को देखेगा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा। समदर्शिना का अर्थ यह नहीं है कि एक जैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ परमात्मा है यह देखेगा। विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि गाय हाथी कुत्ता चंडाल, सब में वो भगवान को देखता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक समान व्यवहार करने में, गाय का को भी जाकर उसके शरीर को सहला रहा है वैसे ही जाकर कुत्ता को भी सहलाने लगेगा, या बाघ को भी वैसा ही सहलाएगा, ये चंडाल के साथ भी वैसा व्यवहार। समदर्शिना का अर्थ सबके साथ भगवान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मंदिर बनाकर पत्थर का श्री मूर्ति स्थापित करते हैं, हो सकता है पुजारी के श्रद्धा और भक्ति के परिणाम में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो भगवान किस रूप में उस विग्रह में है इसका अनुभूति वह भक्त करता है, कितना करता है उसके आध्यात्मिक परसेंटेज के ऊपर है, कितना विकसित है, कैसे भगवान को देखता है। और हो सकता है कि ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो उसके भगवान उसमें नहीं आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई शरीरधारी जीव, चाहे वो किसी शरीर में है, कुत्ता में, ब्राह्मण में, चंडाल में, हाथी में, गाय में, बकरी में, कहीं भी है, उसके साथ परमात्मा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके साथ भगवान है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि घूमते फिरते चलते हुए जीवात्मा को मोबाइल टेम्पल समझकर नमस्कार करो, उसके अंदर भगवान है, भगवान है। यहां तक कि भगवान उद्धव जी से कहते हैं एकादश स्कंद के 29वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में, विशिज्यस्मानान दिशम बेड़ां च दैहिकं विशिज्यमान मानन स्वान दिशम बेड़ां च दैहिकं प्रणमेद दंडवत भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। कहते हैं उद्धव, विशिष्मय मानन, स्मय माने अहंकार, हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एडवांस लोग हैं, हम विद्वान हैं, यह जो मन में अहंकार है, ऐठन है, इसको छोड़कर, त्याग कर और देखना चाहिए क्या कि सभी देहधारियों के अंदर मैं हूं। भगवान खुद कह रहे हैं मेरा निवास है सबके साथ, इसलिए तब क्या करना चाहिए, प्रणमेद दंडवत भूमौ, पृथ्वी पर लौटकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। किसको? अश्व, स्व माने आ, आ के मतलब साथ। किसको? किसको? स्व, स्व माने कुत्ता, चंडाल, गो माने बैल, खर माने गधा। कहते हैं कुत्ता को, चंडाल को, बैल को और गधा को दंडवत जमीन पर लेटकर प्रणाम करना चाहिए। चार का नाम क्यों भगवान लिए? कि चार के प्रति लोग नाक भौंसी करते हैं, अरे कुत्ता है, ये चंडाल है, ये गधा है, बैल है। गो माने बैल, खर माने गधा, चंडाल कुत्ता, स्व तलाबी स्व व स्व आधा तलाबी स्व, तो इसको कुत्ता कहते हैं। इन सबको मतलब ये चार को लेने के मतलब समस्त जीवधारियों को दंडवत प्रणाम करें। तो दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है कि जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, किसी बाघ को देकर दंडवत करने लगे, भावुकता में आकर जय वंदे सिंह देव। इतनी मूर्खता नहीं करना चाहिए, सबकी अलग अलग सेवा है। जैसे भगवान की आरती उठाते हैं वैसे कुत्ते की आरती नहीं उतार सकते, उनकी सेवा भी बतलाए हैं। उनको भोजन देना, वो भूखे बेचारे घूमते रहते हैं, उनको खिला देना, गाय को हरी हरी घास देना, सूर्य को नमस्कार करके जल देना, तुलसी में जल देना, बट वृक्ष के अंदर। भगवान बतलाए हैं काउंटर कहाँ कहाँ पर देने पर मुझको मिलता है। एक काउंटर नहीं है भगवान को देने का, बहुत सारे काउंटर हैं। तो कह रहे हैं कि उन काउंटरों पर देना चाहिए। भगवान को देने के काउंटर तुलसी, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, श्री विग्रह, अग्नि, साफ साफ बतलाते हैं कहाँ कहाँ प्रणाम करोगे तो सीधे मुझे मिलेगा। ये समझो कि मेरे पास डाल रहे हो, दान पेटी है, मुझको प्रणाम कर रहे हो। और प्रणाम लेते लेते बेटी को, गाय को और तुलसी या ये सबको तो कुछ होगा या नहीं होगा। वैष्णव को प्रणाम लेते लेते गड़बड़ी हो सकती है, जो भक्ति जातन अर्थ, वह कहीं यह न भूल कर बैठे कि मुझे प्रणाम कर रहा है। वो आपको नहीं प्रणाम कर रहा है, वो भगवान को प्रणाम कर रहा है। ये साधु के रूप में भगवान को देख रहा है, भगवान का प्रतिनिधि समझकर प्रणाम कर रहा है। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कभी कभी लोग नहीं प्रणाम करने वाले पर नाराज होते हैं और प्रणाम करने वालों से उद्विग्न भी हो जाते हैं। कई प्रवृत्ति है, इतने बेवकूफ लोग इतना क्यों दंडवत कर रहे हैं। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं प्रणाम करने से। कोई बूढ़ा व्यक्ति आकर पैर छू दिया तो युवक साधु नाराज, बेवकूफ कहेगा यहाँ क्यों पैर छू रहे हो, तो क्या करे, तो साधु हो तो किसको पैर छुए। एक बार मैं बाबा से पूछा था, रमेश बाबा से, कि बाबा छोटे छोटे बच्चे प्रणाम कर देते हैं तो सहज हाथ उसके सिर पर आ जाता है, आशीर्वाद देने की इच्छा होती है, लेकिन अपने से बड़े बूढ़े करते हैं तो बड़ा चित्त उद्विग्न होता है। बोलते तो नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कहता है तब तो तुम कच्चे साधक हो, कच्चे साधक हो। बड़े बूढ़े या छोटे किसी के भी प्रणाम लेने का अधिकार आपको नहीं है। नहीं तो बाबा तो करते हैं, लोग तो करते हैं, तो आपको नहीं करते हैं। वो काउंटर पर अपना ऑफरिंग देते हैं, वहां पहुंचता है श्री जी के पास, भगवान के पास, वो आपको काहे को प्रणाम करते हैं। हमको लोग कहते हैं कि रमेश बड़ा अहंकारी है, कोई प्रणाम करता तो कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे पास है क्या कि बोलूं, मन ही मन श्री जी को ऑफर कर देता हूं, उनको जो करना है करती रहे, चुप रहता हूं। लोग प्रणाम करके चले जाते हैं, कहते कुछ बोलता ही नहीं, राधे भी नहीं बोलता। अरे हम श्री जी को सौंप कर निश्चिंत रहते हैं, इसलिए हम न प्रणाम लेते हैं न आशीर्वाद देते हैं। प्रणाम जिनको कर रहा है वो आशीर्वाद दे। यानी कभी कभी तो आप मन में शुभकामना सोचते होंगे कि इसका मंगल हो, कहते हाँ जो ज्यादा सेवा करता है उसका पैर भी कर देते हैं, किशोरी जी से देख लेना। तो अगर मैं किसी की प्रशंसा कर दूं तो बिगड़ जाएगा, बाबा हमको प्रशंसा कर रहे हैं, इस डर से मैं बोलता ही नहीं। तो इस प्रकार भक्तों को सोचना चाहिए। कभी कभी भक्ति जात अनर्थ कई रूप में आ सकते हैं। एक बार संडे को मैं सूरत पहुंचा, उस दिन रात को शाम को प्रोग्राम था, 8 बजे 7 बजे के बाद। लेकिन मैं 11 बजे पहुंच गया। तो नहा कर जब तैयार हुआ तब तक एक भक्त आया, वो प्रभु जी संडे प्रोग्राम संडे क्लास देना है, वृंदावन दास जी कह रहे हैं। यानी कि कोई दूसरा तैयार होगा ना, पता नहीं वो हमको भेजें। यानी नहीं, मैं शाम को कहूँगा, अभी नहीं। तब तक वो आ गए, कहे आपका काम क्या है कि ऐसा बहाना करें, चलिए पकड़ कर ले गए मुझे। तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, 12 बज रहा था, तो उसमें से 2-3 ब्रह्मचारी जानते थे हरे कृष्ण का है कीर्तन करने वाले प्रणाम, और कोई नहीं। खचाखच मंदिर भरा था, बहुत बड़ा हॉल है, भरा हुआ था। श्लोक लिखा गया था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं पूछा बताइए तो क्या कहना है, कहे कुछ नहीं बताना है, जो बोर्ड पर लिखा होगा वो बोलना है। ऐसे ही पकड़ कर ले गए। कहा ठीक है, तो अच्छा श्लोक है, बोल दिया। बोलने के बाद आरती होना था भगवान का, और 50 लोग आकर पैर छू रहे हैं। मैं कहा अरे भगवान के सामने मत प्रणाम करो, मत प्रणाम करो। तो कहे कि आप सबसे पहले आगे चलिए, आगे चले, भीड़ से आगे कर दिए। आरती के बाद जब हम लोग निकलने लगे दोनों साथ में, तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ कर पैर छू रहे हैं। तो कहते अरे मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ और इनसे एजेंट भी हूँ, मैं 68 साल का हो गया, तुम लोग इनको प्रणाम क्यों कर रहे हो, मुझे करो ना। तो उनको भी करते थे कुछ लोग, तो मैं कहा कि देखिए ये मुझको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो मैं साथ में हम लोग फिर गए, बैठे थे कुछ देर तक। मैं कहा कि ये हमको प्रणाम नहीं करते हैं। कहे कि नहीं आपको ही कर रहे हैं। कहे नहीं आप थोड़ा सा सिद्धांत समझिए, यदि ये हमको प्रणाम करते तो मैं जब आया तब क्यों नहीं किए, केवल 2-3 ब्रह्मचारी जो परिचय थे वह किए, हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण, और तो कोई नहीं किया। जब मैंने भगवत वाणी का प्रतिनिधित्व किया, भगवान के वाणी को स्पष्ट रूप से व्याख्या किया, तो भगवान की वाणी उनकी क्षमता उनकी कृपा शक्ति को मेरे अंदर देखकर प्रणाम कर रहे हैं। मैंने उसका प्रतिनिधित्व किया, उस वाणी को इनके सामने दिया, तो ये डाकिया को प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी कोई डाकिया शुभ संदेश देता है कि बेटा IAS हो गया, तो 500 का नोट दे देते हैं डाकिया को खुश होकर, बहुत अच्छा संवाद सुना दिया। और कभी कभी वह सूचना दे दे कि कार दुर्घटना में मर गया, तो मारेंगे तो नहीं लेकिन दुखी हो जाएंगे, खुश नहीं होंगे, आपका बेटा कार दुर्घटना में मर गया, ये अल्लाह का तार दे दिया। अब तो फोन है, पहले लेटर आते थे। तो मुझ डाकिया को ये लोग नमस्कार करें, मुझको नहीं, क्योंकि मैंने इनको अच्छा चीज सुनाया। मैं तो इनका प्रणाम लेता ही नहीं, पहले कुछ भ्रम था लेकिन बाबा की बात सुनने के बाद कंफर्म हो गया कि मुझे अधिकार नहीं है लेने का। तो यह भक्ति जात अनर्थ से बचने के तरीका है, इससे सावधान रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद के लोगों के क्षमता के अनुसार व्यवस्था देनी चाहिए, लेकिन आज के साम्यवादी समाज सब लोगों को आवश्यकता दिलाने के पक्ष में है, लेकिन उनकी क्षमता पर विचार नहीं करता कि ये धन का ठीक से उपयोग करेगा कि मान शराब खाएगा कि पैसे से वेश्यागमन करेगा। उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, उसका अलग विचार करना चाहिए, कम पैसा देना चाहिए, उनको जरूरत पर देना चाहिए गृहस्थों का काम। लेकिन निम्नतर पशुओं को साम्यवादी समाज में भी कोई स्थान नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं। जो छोटे छोटे पशु हैं उनको मार देते हैं। एक बार एक व्यक्ति महाराज श्री से ही प्रश्न कर दिया, महाराज आप लोग ऐसे मना करेंगे तो ये बकरे भेड़ क्या होंगे, हल चलेंगे, इनको नहीं काटा जाएगा तो क्या होंगे लोग। कहे यह जिम्मेवारी आपको ही है, सारी सृष्टि जो बनाया है वो उसकी व्यवस्था करेगा। अनंत कोटि जीव जल में वन में जहां तहां आकाश में रहते हैं, उनका पालन होता है ना। तो आप बकरा के फेर में क्यों पड़े हैं कि बकरे हल चलेंगे थोड़े, उनसे गाड़ी खींचेंगे वो क्या होंगे, उनको तो काटना जरूरी है, एक व्यक्ति पूछ दिया महाराज से। महाराज का इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात नहीं करना चाहिए। आपका बेटा बचपन से पोलियो से ग्रस्त हो गया या पैरालिसिस हो गया, वो नहीं कुछ करने लायक है, तो आप उसको काट कर खा जाएंगे, क्या करेंगे, वो काम लायक है ही नहीं, बल्कि और लोगों का टेंशन का विषय है, उसको पालन करना पड़ता है। तो अब अपाहिज हो गया तो उसको काट कर खा जाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। तो फिर बकरे के चक्कर में क्यों पड़े हैं, वो काम नहीं देगा, तरह तरह के मूर्खतापूर्ण लोग बहस करते हैं फालतू। तो ऐसे जीवों के प्रति भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का कर्तव्य है। लेकिन भागवत में व्यापक सिद्धांत है, प्रभुपाद कहते हैं कि व्यापक सिद्धांत, इसमें संस्तुति की गई कि सभी जीवों का पालन करना गृहस्थ का कर्तव्य है। भिखारी को, गरीब को, दीनहीन को, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना उनकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। कभी कोई मांग रहा है कुछ है, तो लोग कहते चल हट आगे बढ़ो रोटी। एक लड़का बंगाल में मायापुर जा रहे थे, तीन चार लड़के ट्रेन में आए, वहीं उतरना था बर्धवान, तो पैसे पांच रुपया। तो मैं कहा क्या करोगे पैसा? तो मछली भात खाऊंगा। छोटा लड़का 8-10 वर्ष का था, तो कहते मछली खाना जरूरी है? तो कहा कि हाँ बाबा मछली भात खाएंगे। मछली तो बीड़ी नहीं पीते हो ना? तो ना। तो मैं दे दिया 5 रुपया। लेकिन उतरने के बाद उस लड़के देखे हम लोग कि वो बगल में 3-4 लड़के वो सब बीड़ी पी रहे हैं। तो उसमें से एक को मैं बुलाया, बुलाओ, वो भागने लगे। उन लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं दावा, तो अब नहीं ये गलत काम करता है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। रियली अगर वो खाने को मांग रहा है तो खाने वाला चीज दे दीजिए, अगर पैसा नहीं देना चाहते हैं तो कुछ खाने वाला चीज दीजिए। लेकिन ऐसे भिखारियों को भी भोजन नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। कभी रोटी देते हैं या कुछ खाने वाला चीज प्रसाद देते हैं, तो कहते ना पैसा। तो ऐसे बदमाशों को नहीं देना चाहिए, जो निश्चित शराब पियेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे उनको नहीं, लेकिन उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वह देना चाहिए। कभी कभी रोजगार बना लेते हैं भीख मांगना। अब वो कुंभ में ऐसे ही जाड़ा में पड़े रहेंगे, अब आदमी दया में भरकर कोई कंबल, कोई चादर दे देगा और उनके पास बहुत है, उसको ले जाकर फिर दुकान पर बेच देंगे। तो ऐसे लोग भी हैं, फिर भी पता चले कि इसकी आवश्यकता है तो देना चाहिए। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, काफी पैसे की जरूरत है, उसके बिना उसका प्राण जा रहा है, तो जरूर मदद करना चाहिए, जरूर मदद करना चाहिए, देना चाहिए। जो हमारे 10-5 हजार देने से उसका हेल्प हो सकता है तो देना चाहिए। और अपने पत्नी को भी अतिथि सेवा में लगाना चाहिए। इन अत्यंत आसक्ति के साथ लोग पत्नी का काम भी स्वयं कर देते हैं, उससे दूसरे काम में क्या लगाएंगे, घर में भोजन भी बनाकर उसको खिला देते हैं, अब तो कपड़ा भी धो देते हैं, वॉशिंग मशीन है तो अच्छा बहाना मिल गया, किसी को कुछ करना नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। स्त्री अपने जीवन में भोग के लिए नहीं है, जोग में सहायता करने के लिए है। आप जरा विचार कीजिए, भगवान करदम पर जो भगवान कपिल देव के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किए, ब्रह्मा जी के पुत्र करदम ऋषि, सुने हैं कथा तीसरे स्कंद में, 10,000 वर्ष तक तपस्या किए शक्ति अर्जन करने के लिए। पिताजी का आज्ञा था कि जाओ तपस्या करके भगवान से शक्ति अर्जन करो और फिर सृष्टि में सहयोग करो, सृष्टि बढ़ाना है। तो करदम जी इतना शुद्ध भाव से भजन किए कि भगवान का चिंतन भजन करते करते उनका चित्त एकदम शुद्ध हो गया, वो सन्यासियों के ऊपर लेवल पर चले गए। भगवान सामने आए, प्रकट हुए, गरुड़ जी पर चढ़कर भगवान आए, भगवान का देखकर दंडवत किए। इसके बाद भगवान पूछते हैं कि हाँ बोलिए करदम जी, आपको क्या चाहिए, आपने घोर तपस्या किया, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। तो करदम जी कहते हैं प्रभु आपसे कुछ छिपा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने शील स्वभाव के अनुरूप, अपने अनुरूप पत्नी चाहता हूँ, मुझे विवाह करना है, आप हमारी पत्नी की व्यवस्था कर दीजिए। सुनकर दिमाग लोगों का चकरा जाता है कि 10,000 भजन के बाद बाबा जी विवाह करना चाहते हैं, और ये भी भगवान से मांग दिए पत्नी। बढ़िया बढ़िया विद्वानों को भी, बहुत टॉप लेवल के विद्वान भी इस रहस्य को नहीं समझ पाते। अब मैं यहां क्या बतलाऊं, मुझे बहुत भारी क्षोभ हुआ और डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट कंप्लेन भी कर दिया, संजोग नहीं जुट पाया। कृष्णचंद्र शास्त्री इस विषय में बोल रहे थे, उनका सीडी सुना था दूर से, तो कह रहे हैं कि देखिए इस यही बाबा जी लोगों का हाल है, भजन करते करते स्त्री की इच्छा हो जाती है, एक गलती बोला दूसरा बोलने लगा कि लड़के के चक्कर में नौ लड़कियां उत्पन्न कर लिए। इतना क्रोध आया कि मैं इच्छा हुआ कि जाकर निकाल कर जूता चार पांच जूता मार कर तब बात करो उस दुष्ट से। और किसका शिष्य है? रामानुज शास्त्री जो मधुबनी के बिहार के थे, संपूर्ण भागवत का एक एक श्लोक उनको याद था, जैसे 700 गीता लोग रट लेते हैं वैसे संपूर्ण भागवत उनको याद था। मैंने अपने आंखों से देखा है उठाइनी एकादशी के दिन बैठकर दंडी आश्रम में जब बैठते थे 5 बजे आचमन करके भागवत लेकर 24 घंटा में भागवत पाठ करते थे और पेशाब करने भी नहीं उठते थे, एक आसन पर 24 घंटा भागवत पढ़ते थे, 24-25 घंटा में पूरा करके तब हवन करते तब उठते थे। इतने महत्सिद्ध महात्मा वो पढ़ाए हैं उनको भागवत, उनका स्टूडेंट थे। उस 80-81 में मुझे याद है 84 में कि हम लोग जब कभी मिलने के लिए जाते थे तो कृष्णचंद्र शास्त्री आकर वहाँ बैठते थे पढ़ते थे, उनसे भागवत पढ़कर और इस तरह की बातें कर रहा है। जानते हैं क्यों भगवान कहे? चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, सारे टीकाकार लिखते हैं, पता नहीं वो लोग पढ़े हैं कि नहीं, हमको तो आश्चर्य हो जाता है कि कर्दम मुनि सोचने लगे कि भगवान मिल गए मेरे तपस्या से, इतना प्रसन्न हो गए, भगवान से मैं क्या मांगू। लेकिन भगवान को प्राप्त करने में मीडिएटर पिताजी हैं, पिताजी नहीं भेजे होते तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। तो यदि मैं भगवान से भगवान का धाम और भगवान की भक्ति प्रेमा भक्ति मांग लूं तो पिताजी के प्रति कृतज्ञता हो जाएगा, कृतज्ञता नहीं होगा। जिनके कृपा से जिनके उपकार से आज भगवान प्राप्त हुए उस पिता का सहयोग तो करना चाहिए, ये कृतज्ञता है। तो कृतज्ञता में भर कर सोचे कि तो बिना विवाह किए तो पिता का काम होगा नहीं, गृहस्थ सृष्टि करना है, तब ये जिम्मेवारी क्यों न हम भगवान पर दे दें, क्योंकि ये सर्वज्ञ सर्वविद सर्व अंतर्जामी प्रभु हमारे हृदय को हमारे स्तर को समझते हैं और यही समझ सकते हैं कि हमारे लायक कोई कौन स्त्री है जो हमारे जोग में सहायता करे भोग में नहीं। इसलिए काम ही भगवान को सौंप दिए। तो भगवान की क्या स्थिति हुई, भागवत के शब्द आप निकाल कर पढ़िए कि भगवान इतना प्रभावित हो गए वह सुनकर कि विवाह करने की बात हमसे कर रहा है, भगवान का सारा शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू गिरने लगा झरझर, और गरुड़ के कंधे को पकड़ लिए। भगवान गरुड़ बगल में थे, भगवान बगल में खड़ा थे, लेकिन गरुड़ को पकड़ लिए। वहां चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अस्खलन परिहारार्थ, गिर न जाए इसके लिए संभलने के लिए गरुड़ को पकड़ लिए, इतना भगवान विभोर हो गए और झरझर झरझर आंसू भगवान के आंखों से गिरने लगा और उस सरोवर में गिरा, इसलिए उस सरोवर को बिंदु सरोवर कहते हैं। भगवान के आंसू गिरा प्रेमाश्रु और कहे करदम आपकी पत्नी मनु महाराज की दूसरी बेटी देहूती है, क्योंकि वह नारद आदि ऋषियों के मुख से आपकी महिमा सुन चुकी है और जब से आपकी महिमा सुनी है अपना मन आपको दे चुकी है, इसलिए आप उसको स्वीकार कीजिएगा। परसों दिन मनु महाराज लेकर देहूती को आएंगे, आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात, आप देहूती के गर्भ से 9 महान कन्याओं को जन्म देंगे जो जगत जननी होगी, बड़े बड़े प्रजापतियों की पत्नी बनेंगी, जिनका नाम स्मरण से अनंत कोटि पाप तत्काल समाप्त हो जाता है। ऐसी पत्नियां आपकी, ऐसी पुत्रियां देहूती के गर्भ से जन्मेंगी, अरुंधति अनुसुईया जैसी। अच्छा, दूसरी बात। अब तीसरी बात कहते हैं कि एक बात और कहूं कर्दम जी, आप जैसे आदर्श गृहस्थ को देखकर मुझे लोभ हो रहा है, 10वां संतान के रूप में मैं स्वयं जन्म लूंगा। पूरे वैदिक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां भगवान को पुत्र बनाने के लिए तपस्या करना पड़ा है तब भगवान पुत्र बने हैं, एकमात्र ही उदाहरण है जहां भगवान पुत्र बनने के लिए मचल गए हैं, वह है कर्दम करोड़ों सन्यासियों के ऊपर। सन्यासी से ऊपर स्तर है कर्दम जी का, फिर भी विवाह किए पिताजी की कृतज्ञता के लिए। विवाह के लिए मनु महाराज जब लेकर आए, उनका स्वागत सत्कार करने के बाद एक बात कहते हैं कि अवश्य मैं भगवान के द्वारा सुना कि अपना मन मुझ में दे चुकी है, इसको स्वीकार करूंगा। और एक दूसरा न्यूज भी सुना हूं इसके विषय में कि जब वे अपने छत पर गेंद खेल रही थी, ऊपर फूल फेंक कर ऐसे पकड़ कर रोक रही थी, तो आकाश मार्ग से जाते हुआ एक गंधर्व, जो उर्वशी आदि अप्सराओं के साथ रहने वाला गंधर्व, अचानक इसके चेहरे को देखा तो बेवकूफ इतना आसक्त हो गया कि थोड़ा स्पीड कम करके देख लेना चाहिए, वो गिर पड़ा, विमान से नीचे गिर पड़ा। जिसके सौंदर्य को देखकर गंधर्व धरती पर गिर पड़ा था, वह ब्रह्मांड सुंदरी देवती मुझको चाह रही है, क्यों नहीं मैं इसका इसके साथ विवाह करूंगा, अवश्य करूंगा, और यह अपनी मति मुझको दे चुकी है, किसी दूसरे पुरुष में फ्रेंडों के साथ नहीं घूमी है, अवश्य इसको स्वीकार करूंगा, एक बात। लेकिन दूसरी बात, जब ही पिता की आज्ञा पूरा होगा, प्रथम संतान प्राप्त होगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बस हो गया। अब तो शत्रुपा और मनु महाराज देखने लगे देवती का मुंह, दोनों माता पिता देवती को देखने लगे। देवती कही, ओके हम तैयार हैं, तैयार है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इन्हीं को पति बनाऊंगी। विवाह के समय ही कोई पति कह दे कि पहला पुत्र होगा तभी तुमको छोड़ दूंगा, कौन ऐसी पत्नी है जो कह दे कि मैं इनके साथ विवाह करूंगी? देवती। और देवती के साथ कर्दम जी का विवाह हुआ। अब मैत्री मुनि कथा कह रहे हैं विदुर जी से। मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर यह जोड़ी जानते हो कैसा है? भव और भवानी, शिव और पार्वती का जोड़ी है। जैसे राजकुमारी पार्वती एक निष्किंचन महात्मा को, शिव को स्वीकार किया, आज तक वो घर ही नहीं बनाया पत्नी को रहने के लिए, जंगल में रहता है। और वो कौन थी? राजकुमारी, पर्वतराज की पुत्री थी, और वो शिव को स्वीकार की। वैसे ही यह जोड़ी भव और भवानी की तरह, शिव और पार्वती की तरह जोड़ी है देवती और कर्दम की। विवाह करके अपने साधना भजन में 1000 वर्ष तक फिर लग गए। देवती बेचारी घर का जो भी साड़ी जो भी कपड़ा मिला था उसको कुछ दिन पहने, 1000 वर्ष में तो सारा कपड़ा खत्म और जटाजुट बन गया। पेड़ के छाल पहनती थी, कंदमूल जुटाकर पति के अनुरूप सेवा करती थी, कोई डिमांड नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोर्ट में नहीं जाना है, कुछ नहीं, समर्पित। पत्नी स्वीकार करने के बाद एक परिस्थिति खड़ा होती है, पाती थी पति, पत्नी का पालन करे वो पति है, नहीं पालन करे तो कोर्ट में चली जाएगी। लेकिन देवती को कोई कंप्लेन नहीं। 1000 वर्ष के बाद ध्यान आया कि अरे ये तो मनु नंदिनी देवती हमारे जैसे तपस्विनी हो गई। तब उनको याद आया, कहा देवी तुमको क्या चाहिए? तब सब आगे की कथा आगे है। बाद में जब संतान प्राप्ति के बाद वो जाने लगे, तब कही, पतिदेव आपने कहा था कि हमारे सारे प्रॉपर्टी में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है जिसको कि जिसके कारण आप सबको छोड़कर जा रहे हो, एक कामक विमान प्राप्त करके भी आप जा रहे हो, उसमें मुझको नहीं कुछ मिला, मैं ठगी गई। तो फिर कहे कि अभी चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे गर्भ से आएंगे, वही तुमको उपदेश करेंगे। देखो कर्दम का स्तर, भगवान कपिल जन्म लिए, जिनको ढूंढने के लिए वन में जाकर तपस्या किया जाता है वही पुत्र बनकर आए, फिर भी उनको छोड़कर उनकी परिक्रमा करके नमस्कार करके निकल गए। और भगवान कपिल कहते हैं, हाँ पिताजी जाइए आप भजन के लिए। अद्भुत भक्त भगवान का संबंध है, आप भजन कीजिए किसके लिए? उन्हीं के लिए। लेकिन यह शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे डीटी और मंदिर की बात तो छोड़िए, डायरेक्ट भगवान भी घर में आकर रहे फिर भी घर बंधनकारी है, फिर भी कुछ मम तो हो ही जाता है, मेरा है, मैंने इसको बनाया है, यह सब नहीं होना चाहिए भजन में, इसलिए घर छोड़ती है। और भगवान कपिल देव अपनी माँ को संभाल रहे हैं, उनको उपदेश कर रहे हैं, वो चले गए। ये अद्भुत चरित्र भागवत में है। तो केवल भोग के लिए नहीं, जोग के लिए विवाह करना चाहिए। और यहाँ दूसरे श्लोक में 12वां में कहा गया कि अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक लोग मान लेते हैं कि कभी स्वयं को इतना भारी धोखा में डालते हैं, अपने साथ भी धोखा होता है, अन्यों के साथ, माता पिता गुरु शिक्षक उपदेशक किसी को मार सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं। अतएव ऐसे आसक्त चित्त वाला गृहस्थ यदि पत्नी में आसक्ति त्याग दे, घर छोड़ दे और भगवान का भजन करे तो भगवान को जीत लेता है। अजितो अपि जितो असि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मन बाड़ी और शरीर से विमित भाव होकर साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी महिमा की कथा को सुनता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से त्रिलोकी में अजय अजित आपको भी जीत लेता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनो भी प्रायो जसो जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। स्थाने स्थिता एक और है, ज्ञाने प्रयास मुदपाश नमंत एव जीवंत सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनो भी जे प्राय जसो जित जितो पशित त्रिलोक्याम। वह व्यक्ति त्रिलोकी में अजीत आपको भी जीत लेता है। जो व्यक्ति कहीं ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ता, साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी महिमा कथा को सुनता है और अपने ही स्थिति में रहता है, अपने स्थान में, स्थान का कई अर्थ आचार्य जो कहते हैं, पंजाबी बाग में है, चाहे संत नगर में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे स्वर्ग में है, कहीं भी है, या गरीबी में है, धनी है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जवान है, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में वह भगवान की कथा को सुने। श्रुतिगतम कान के माध्यम से जो आपकी लीला कथा आती है, भवदीय वार्ताम आपकी लीला चरित्र आती है, सन्मुखरिताम साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई कथा आती है और उसको कथा सुनना वह जीवन स्टाइल बना लेता है, उसके बिना जी नहीं सकता। जैसे लोग बिना चाय पिए, बिना बीड़ी पिए लैट्रिन नहीं जाते, ये जीवन स्टाइल बना लिए हैं, वैसे जो बिना कथा के जी नहीं सकता ऐसा व्यक्ति प्रायः अजित जीतो असी, आप जैसे अजीत को भी जीत लेता है। त्रिलोकी में फेमस है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आप अजीत हैं। भक्त लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान अजीत है। जब मैं बात कहता हूं तो मुझे रामचरितमानस की घटना आ जाती है याद, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मुद्रिका गिराए सीता जी को, तो मुद्रिका हाथ में ली सीता, लेने के बाद विचार करने लगी, यह तो मुद्रिका हमारे स्वामी का है, यह कहां से आ गया। तो चकित चितो मुद्रिका पहचानी, चकित होकर पहचानने लगी कि ये मुद्रिका सीता जी ही पहनाई थी, विवाह के प्रथम मिलन में मुद्रिका पहनाई थी, तो उसको पता था कि ये मुद्रिका भगवान के हाथ का है। तो मन ही मन सोच रही है कि माया से ऐसी रची नहीं जाई, रावण अगर माया से चाहे कि मुद्रिका बना ले ऐसा नहीं हो सकता, माया से ऐसी रची नहीं जाई, समर जीत सकई न रघुराई। अगर कोई कहे कि भगवान को कोई हरा कर उनके हाथ से मुद्रिका छीन लिया, असंभव, समर जीत सकई न रघुराई, युद्ध में उनको कोई हरा नहीं सकता है। तब ये कैसे आ गया, सीता मन विचार करना ना टेंशन में पड़ गई कि ये बनाया भी नहीं जा सकता, केवल एक पीस है और भगवान से कोई छीन भी नहीं सकता, एकदम क्लियर है, समर जीत सकई न रघुराई, यह विश्वास सीता को है। दो जगह सीता का विश्वास अद्भुत ढंग से प्रकट होता है, पक्का विश्वास है कि उनको कोई हरा नहीं सकता। तब कैसे बन गया, बहुत टेंशन में हो गई। तब हनुमान जी बोल दिए, मधुर वचन बोले हनुमाना, तो कोई कौन है, कोई भाई जो भगवान के नाम गुण वर्णन कर रहा है वो सामने आओ ना। तो सामने आया तो बंदर घूंघट डालिए तो माया है, कोई तो फिर कपटी कोई राक्षस है, इस तरह रूप आकर दिखा रहा है। तब भगवान का प्रतीति देने के लिए हनुमान जी एक विशेष बात कहते हैं जो सीता को विश्वास हो जाए। भगवान मुद्रिका दिया और उपाय भी बतलाए, तो राम नाम कुछ भी लोगे नहीं विश्वास करेंगे, स्पेशल नाम बतलाता हूं। तब हनुमान जी कहते हैं, राम दूत मैं मात जानकी, मैं राम का दूत हूं, हे मात सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान का सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं रामदूत हूं, क्योंकि करुणा निधान गोपनीय नाम सीता जी दी थी। जब भगवान को मुद्रिका पहनाई तो भगवान कहे कि प्रिय, मैं तो अयोध्या से आया नहीं, विवाह के मूड में तो आया नहीं, मैं बक्सर आया, वहां से विश्वामित्र के साथ आ गया जनकपुर और बीच में धनुष तोड़कर विवाह का घटना हो गई, तो मेरे पास तो तुमको देने के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं है, मैं नहीं लेकर आया हूं, मैं क्या दे सकता हूं। नहीं, कोई बात नहीं प्रियतम, हमारा गिफ्ट आप ही हैं। तो कहे नहीं, फिर भी मैं एक गिफ्ट तो दूंगा ही, ऐसे कैसे होगा कि तुम मुद्रिका पहना दी अंगूठी और मैं कुछ न दूं। मैं तुमको एक वचन देता हूं, तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी भी स्त्री में मन नहीं रखूंगा, बस तुम ही मेरी तुम हो, मैं एक पत्नी व्रत धर का व्रत लेता हूं। तब सीता जी का दी जय हो करुणा निधान जय। एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर क्या गिफ्ट हो सकता है। सीता जी कहे कि जय हो करुणा निधान, अचानक निकल गया उसके मुंह से, और वह करुणा निधान कहकर ही पुकारती थी। तो यह बात सीता जी और राम ही जानते थे, और बीच में बंदर बोल दिया सत शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं राम का दूत हूं, करुणा निधान का सौगंध खाकर बोल रहा हूं। तब घूंघट हटा दी, तो करुणा निधान का सेवक है, नर बानर संग भय से कैसे। तब सारी कथा सुना दी, ऐसे ऐसे हुआ, तब विश्वास हो गया सीता जी। तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं, समर जीत सकई न रघुराई, भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन उनकी कथा सुनने वाला उनको जीत लेता है, पीछे पीछे चलते हैं जैसा चाहता हो। ऐसा उद्धव जी से कहते हैं, जानते हो उद्धव, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी पूछते हैं क्यों, क्या जरूरत है, क्योंकि वो चले कुछ तेज चले तो उसके चरणों से धूल उड़े और हमारे शरीर पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। अपनी पवित्रता के लिए मैं भक्तों के पीछे चलता हूं, भक्तों के चरणों से उड़ा हुआ धूल जब मेरे ऊपर पड़ता है तब मैं पवित्र हो जाता हूं। एकादश स्कंद के शायद 14वें अध्याय में श्लोक है, 14:11, कहते हैं इस प्रकार 14 या 19 कहीं है। तो इस प्रकार भगवान भक्तों का इतना मान देते हैं, तो भगवान की भक्ति करने से भगवान वश में हो जाते हैं। एक बात ब्रह्मा जी कहे, और यहां पर स्पष्ट रूप से देवर्षि नारद कहते हैं कि यदि अपनी पत्नी की आसक्ति छोड़कर, ये बहुत कठिन काम है, ये झगड़ा टंटा करके डाइवोर्स लेना है दूसरी बात है, मन नहीं पटा, लेकिन अनुकूल पत्नी है, सेवा परायणा पत्नी है, तो ऐसे पत्नी को छोड़कर अगर भजन में लग गया, भगवान की भक्ति में, तो वह व्यक्ति भगवान को जीत लेता है, जीत लेता है। पत्नी कभी कभी अनुकूल होकर भी बाधक हो जाती है, प्रतिकूल होकर सहायिका हो जाती है। एक बार 3 महात्मा द्वारिका में जुटे हुए थे, तुकाराम जी भी थे, ज्ञानदेव और नरसिंह मेहता, तीनों गृहस्थ एक साथ जुट गए। नरसिंह मेहता कहते हैं कि आप बतला सकते हैं आपके भक्ति का क्या राज है। तुकाराम जी से पूछे, आप भक्ति करते हैं इसमें सबसे बड़ा सहायिका कौन, सहायक कौन है। तो तुकाराम जी कहते हैं हमारी श्रीमती जी। ज्ञानदेव जी कहे कि हमारी भी श्रीमती जी। तब नरसिंह मेहता कहे हमारी भी श्रीमती जी। तो तीनों पत्नी ही सहायक है, तब पूछने लगे कैसे कैसे। तो तुकाराम जी कहते हैं वो मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि आज तक एक सेकंड के लिए मन उसमें नहीं लमा। मैं जानता हूं कि घर जाने पर क्या होगा, वो गाली देगी डांटेगी, इस डर से मैं सत्संग में ही रहता हूं, वहां सुख मिलता है, घर जाने में तो मुझको भय लगता है, इसलिए मन बड़ा निश्चिंत रहता है उससे, उसके कृपा से भगवान में। ज्ञानदेव जी कहे कि मैं प्रवचन करता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, और वो कभी कभी आ जाती है, सुन लेती है, अगर मैं कहने के अनुसार किया नहीं तो मेरे ऊपर चढ़ बैठती है। लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, अब तक सोए, चलिए मंगलाती करो, जप करो, भागवत पढ़ो, मैं जो बोलता हूँ मुझ पर ही प्रैक्टिकल करती है, इसलिए भजन करता हूँ, इसलिए भजन करता हूँ। और नरसिंह मेहता कहे कि बड़ा समय से पधार गई, मुझको निश्चिंत कर दी, झंझट ही खत्म हो गया। तो इस तरह से अनुकूल प्रतिकूल और हर परिस्थिति में ये लोग आदर्श गृहस्थों में एक है। ये तीनों का जो मैं नाम रखा, ये बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है और भगवान के साथ इनकी मित्रता थी, एकदम सीधा संबंध था। तो ऐसे घर गृहस्थी में जो रहने वाले व्यक्ति अपनी पत्नी से अनासक्त होकर भजन करे, नाराज होकर घर छोड़ दे, ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति करे, वो भगवान को जीत लेता है, अजय को जीत लेता है, अजितह जीतह, अजित को भी जीत लेता है। तो ये सब गृहस्थ धर्म की कथा कर रहे हैं, और भी आगे आप पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा महाराज, बहुत अच्छा बताया आपने, सारा एक्सप्लेन किया महाराज। जैसे आपने बताया कि जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना चाहिए, किसी को देख के जैसे कोई गरीब है उसको देना चाहिए, तो भगवान गीता में कह रहे हैं यत करोषि कौन्तेय, तो मुझे दान करते हो या मुझे अर्पित करते हो किसी को देना चाहिए, तो अगर मैं वैसे ही किसी को दान देंगे तो हम बंधन में फंसेंगे, तो उसको कैसे समझें इस बात को?
भगवान का स्मरण करके दे दीजिए, भगवान के ड्यूटी के सामने 5,000 रुपया रखकर फिर किसी गरीब को दे दीजिए। हे प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पय, आपकी है और आपके ही दुखी जन की सहायता कर रहा हूँ, उनको बता कर दीजिए। अपने दाता मत मानिए, उनका नौकर मानकर दान कीजिए। भगवान की संपत्ति भगवान को भोग लगाकर किसी को खिलाइए, भगवान के पैसा। अभी हम बॉम्बे में आ रहे थे तो एक व्यक्ति दक्षिणा दे रहे थे, तो अपना पैसा ले जाकर ठाकुर जी के सामने रखे, और जैसे भोग लगाया जाता है वैसे हाथ जोड़कर, तो हम और असीम कृष्ण थे, मैं क्या कर रहे हैं। वो कुछ भी दान देते हैं तो भगवान को वैसे ही खड़ा होकर कुछ देर तक प्रार्थना किए, वहाँ से पैसा उठाए, दिए। मैं कहा बहुत अच्छा तरीका है, हमारा क्या है, उनका है, उनको बता दूं कि इनको दे रहा हूं। मुझको तो बहुत अच्छा लगा, मैं कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद। इन्हीं का है ना, तो इनको बिना बताए अगर दे दूंगा, तो मैं कहा कि और कुछ सब चीज़, तो हाँ सब चीज़ ऐसे करता हूँ, इनको बताकर खाता हूँ, इनको बताकर देता हूँ। महाराज के शिष्य हैं, अपने ही गुरु भाई गृहस्थ हैं, बेचारे वृद्ध हैं, मुझको बहुत अच्छा लगा। अभी अभी परसों दिन की घटना है, सुबह सुबह। तो ऐसे ही करना चाहिए।
थैंक यू,
ठीक, हरे कृष्ण, धन्यवाद।